ये लोग तुमसे कहते हैं वो क़यामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कहो तुम्हारे लिए कैसे रात मुकर्रर है जिसके आने में ना एक घड़ी भर की ताखीर तुम कर सकते हो और ना एक घड़ी भर तुम इससे पहले और न इससे पहले आई हुई किसी किताब को तस्लीम करेंगे। काश तुम देखो उनका हाल उस वक्त जब ये जालिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे, उस वक्त जब एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे। जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे। अब ज़रा इन जुमलों को सुनिए और उनका रिग्रेट और उनका गम और तकलीफ़ और गुस्सा देखिए। बड़े बनने जिनको लोग फॉलो करते थे ना, लीड्स, इन लीड्स, ट्रेंड सेटर्स, उनको लोग कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई खड़ा होके बहकाने वाले और शैतानी चीज़ों की तरफ बुलाने वालों को कह रहा है, एक एक ऐसे चमकते चेहरे को देख के कह रहा है अगर तुम ना होते ना तो हम मोमिन होते। तुम्हारे बारे में हम गुनाहगार हुए, तुम्हारे बारे में हम सोचते रहे, तुम्हें हम देखते रहे, तुम्हारे गाने सुनते रहे, तुम्हारी फिल्में देखते रहे। मिसाल दे रही हूँ, यानी ये अंदाज़ होता है कि वहाँ लोग खड़े होकर लोगों को मुँह पे कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम बड़े अच्छे होते। वो बड़े बनने वाले उन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें इस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आ गई? हम रोकते थे तुम्हें कुरान पढ़ने से? हम रोकते थे तुम्हें नमाज़ें पढ़ने से? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। देखा जाए तो रोकती तो हैं ये चीज़ें। जब कलामे दिल फरेब आ जाता है, लाहवल हदीस ज़िंदगी में आते तो कुरान ही छूटता है। मैं तो देखती हूँ कि दुनिया की तालीम आती है तो दीन की तालीम छूटने लगती है, दुनिया की जॉब आती है दीन की तालीम छूटती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये चीज़ें रोकती हैं, लेकिन वहाँ ये सब कह देंगी चीज़ें हमने तो नहीं रोका था। वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वालों से कहेंगे, नहीं बल्कि शब रोज़ की मक्कारी थी। पहले तो रात को होता था, अब तो 24 घंटे की नशरियात होती हैं जो लोगों को इतना माइल कर लेती हैं कि उसके बाद शायद वक्त ही ना बचे नमाजों के लिए भी। जब तुम हमसे ये कहते थे कि हम अल्लाह से कुफर करें और दूसरों को इसका हमसर ठहराएं, आखिरकार ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे। हम इन मुनकरीन के गलों में तौक डाल देंगे। क्या लोगों को इसके सिवा कोई और बदला दिया जा सकता है कि जैसे अमाल उनके थे वैसी ही जजा वो पाएं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और इस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो। कौन होते हैं खाते पीते? मुतरफीन, इन लीड्स, दौलतमंद लोग, बड़े लोग, हाई सोसाइटी के लोग। क्या कहते थे वो लोग? जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम इसको नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा, हम तुमसे ज़्यादा माल और औलाद रखते हैं, फ़ख्र करते थे, और हम हरगिज़ सज़ा पाने वाले नहीं। यानी हम इतने बड़ों पर अल्लाह हाथ डालेगा? नहीं, हम बहुत उसके हाथों से दूर हैं। ए नबी, इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला रिस्क देता है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। बाकी रह गई ये तुम्हारी दुनिया, तो ये तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो। हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे, यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी जज़ा है। यानी जिनकी औलादें और जिनके माल अल्लाह के रास्ते में लगे, कल वो क़यामत के दिन अल्लाह का कुर्ब दिलाएंगी। दुआ करें कि हमारी औलादें और हमारे माल ऐसे ही हो जाएं कि कल हमें अल्लाह के करीब कर दें, और वो बुलंदो बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, तो वो अज़ाब में मुब्तला होंगे। ए नबी, इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो इसकी जगह वही तुमको और देता है, और वो सब राज़िकों से बेहतर राज़िक है। याद करो वो दिन, कौन सा? वयौम यक्षुरुहुम जमीया, और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? वो जवाब देंगे कि पाक है आपकी ज़ात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। उस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अज़ाब जहन्नुम का मज़ा जिसे तुम झुटलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी आयात साफ साफ सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं, ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको इन माबूदों से बरगश्ता कर दे जिनकी इबादत तुम और तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं। हर दौर में ऐसे ही होता है ना, शैतान दिलों में डालते हैं, लो अब तुम्हारा स्टाइल छुड़ा रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी, बाप दादा, तुम्हारे बड़ों ने ये काम किया, तुमने वो किया, अब इस बातों में आके तुम छोड़ दो। तो ये नबी सल्लम के बारे में भी ये बातें कहलाते थे, और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है, नऊज़ु बिल्लाह। खड़ा हुआ इन काफिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो सरीह जादू है। یعنی یہ کہاں کرنے والی باتیں، یہ ماننے والی کوئی باتیں؟ کسی کو اوپر جادو ہو تو پھر ہی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کو کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے اشرے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ اے نبی ان سے کہو، بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ بڑا دل سوزی کا انداز ہے، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب سورت کا اینڈ ہے۔ بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے، یعنی اگر اکیلے سوچنا اچھا لگتا ہے تو اکیلے، اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ۔ بعض باتیں مل کے سمجھ آتی ہیں، بعض اکیلے میں آتی ہیں، یعنی ڈسکشن کر لو کسی سے اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ یعنی ان کی کوئی بات ہے جو مجنوں میں ہو، دیوانوں میں ہو، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ لوگ دین کے بارے میں یہی کہتے ہیں، دین والوں کو کہتے ہیں یہ جذباتی ہیں، بہت بات بڑھا دیتے ہیں، اتنا نہیں ہے، ایگزیجوریشن ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ایک آنے والے سخت عذاب سے پہلے تم کو اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات کہ یہ کرتے کیوں ہیں بھائی، ان کو کیا مشکل ہے تمہارے حصے کی جنت لینے کی؟ تمہیں تو خواہشوں سے جنت مل رہی تھی، یہ تمہیں عملوں کی جنت ملا رہے ہیں۔ تمہیں مفت کی جنت مل رہی تھی، یہ اتنے مہنگے عمل کرا کے جنت لینا چاہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کل ما سالتکم من اجرن، کیا اگر میں نے تم سے اس کا کوئی اجر مانگا ہے تو جاؤ پھر وہ تم کو ہی مبارک ہو۔ یعنی اللہ کے نبی دین کی بات کرنے لئے اتنے بے لاگ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ میں تم سے پیسے لے کے تھوڑی تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری مرضی کی بتاؤں، میں تو تم سے کچھ مانگتا نہیں، اور اگر کبھی کچھ مانگوں فہو لکم، وہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سچ ہے نا، قرآن کی روشنی واقعی حق ہے، اور پچھلی زندگی کے سارے باطل نظریات پھر چھٹ جاتے ہیں۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں، یعنی اگر میں ایگزیجوریٹ کر رہا ہوں، میں بھٹک گیا ہوں، تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے۔ اب ان کی موت کا وقت، قیامت کا وقت۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّقَامٍ قَرِيبٍ، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، امیجن کریں، اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، عمل کا موقع تو اس دنیا میں تھا، کچھ تبدیلی کرنی تھی تو اس دنیا میں کرنی تھی، کچھ معاملہ کرنا تھا سیدھا تو یہاں کرنا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ بعض لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے دور کی باتیں لاتے، سیدھے سیدھے دلائل موجود ہوتے ہیں قرآن اور سنت میں، اور اس کو چھوڑ کے ادھر سے اور ادھر سے پکڑ کے چیزیں لاتے تھے، بڑی بحثیں کرتے تھے، بڑے انٹلیکچوئل بنتے تھے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں۔ آج کیا ہو گیا؟ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے۔ انہم کانو فی شک کے مریب، بے شک یہ گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا میسج ملا پوری سورت کو پڑھنے سے، سورت سبا کو؟ نہ شکریوں کا نتیجہ، نعمتوں کا زوال۔ جتنا تقوی اندر آتا ہے نا، اتنا انسان اللہ کی مرضی کو جاننے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے ایک لفظ دوسروں سے سنا ہوگا کہ میری اس سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، سنتے ہیں نا دوستوں میں، فرینڈس میں، کبھی شوہر بیوی میں، ماں بیٹی میں ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونے کا نام ہے۔ یہ ساری تعریفیں اگر تقوی کی آپ ایک جگہ جمع کر سکیں بعد میں، اور اس کے ایک چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ بنا لینا، تو اس کو اپنے والیٹ میں رکھا کریں۔ اللہ کی مرضی کے بندے کی مرضی کے ساتھ ملنا، یعنی بندے کی مرضی رب کی مرضی سے مل جائے، یہ ہے تقوی۔ میرے رب کو یہ پسند ہے، آج سے مجھے بھی یہی پسند ہے۔ میرے رب کو یہ نہیں پسند، آج سے مجھے بھی نہیں پسند۔ कितने लोग दुनिया में कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं या एडजस्ट करते हैं तो एक दूसरे के लिए छोड़ते हैं। शादी के बाद लड़कियां कितनी बातें छोड़ देती हैं और कितनी चीज़ें अपना लेती हैं सिर्फ शौहरों को खुश करने के लिए। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है। यहाँ हम रुकेंगे, पारा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, दुआ करें कि तकवा पूरा हो जाए कुरान सुनने के दौरान। कल के सबक में सूरह यासीन आ रही है पारे में, आप कोशिश करें जो साथी सूरह यासीन से बहुत मोहब्बत करते हैं बुला लें उनको। क्या दिया आज के इस इतने हिस्से ने आपको? कोई अपनी बिल्कुल प्योर फीलिंग्स खुद देना चाहे तो हाथ खड़ा करें जी प्लीज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे सूरह अज़ाब को याद है कि मैंने जब पहले बार हिजाब लिया था, पिछले साल की बात है, शुरू के मतलब मार्च या अप्रैल की बात हो गई। उससे पहले मैंने हिजाब लेते थे लेकिन मूड से, यानी जब कभी लिया तो दिल किया तो ले लिया, नहीं दिल किया तो नहीं थे लेते। दूसरी बात यह थी कि मैं उल्लीवाल में काम करती थी और वहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था जब मैं ना, मैंने बस अल्लाह से हदायत मांगी और उस हदायत के बदले में मुझे शौक हुआ कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ने का। वो पहली बार मैंने पढ़ा, उससे पहले मैंने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन कभी पढ़ती थी तो छोड़ देती थी ऐसा था। लेकिन वो पहला मौका था कि मुझे पूरा कुरान जो तर्जमे के साथ पढ़ने का मौका मिला। और मैंने अपने आप से वादा किया जब मैं कुरान में पढ़ूँगी खुद हिजाब का तो मैं हिजाब लेना शुरू कर दूँगी। इससे पहले मैंने सूरह नूर में पढ़ा, निसा में पढ़ा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है, मतलब वो क्योंकि आपके घर के अंदर के पर्दों के बात करते थे उसमें। लेकिन जब सूरह अहज़ाब में मैं आई हूँ, मुझे हफ्ता लगा यानी अपने आप को हाँ या ना में। लेकिन हुआ यह कि मैं सूरह अहज़ाब में इस चीज़ पे आके रुक गई हूँ, यानी मैं पढ़ ही नहीं सकी आगे क्योंकि मैंने अपने आप से अहद किया था कि मैं लूँगी यानी हिजाब। तो जब सूरह अहज़ाब के इस मौजू पर मैं आई हूँ तो मैं इससे हफ्ता मुझे लगा यानी, तो जिस दिन मैंने हिजाब ले लिया उसी दिन फिर मैं आ गई स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला, और फिर उसी के कुछ मंथ्स के बाद मुझे हज का भी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर मैंने हज भी किया। तो ये कि जब अल्लाह के राह में एक कदम उठा लेते हैं ना फिर अल्लाह ताला आगे लेके जाता है, आप बंदे को पीछे कभी नहीं जाने देता। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आप भी कोशिश करें अल्लाह ताला कभी भी किसी को, मतलब अपनी तरफ आने वाले को कभी वो नहीं हारने नहीं देता कभी भी। जो अल्लाह की तरफ आएगा वो अच्छाई की तरफ ही जाएगा, तो वो कभी भी हार नहीं होगा, उसके हार नहीं होगी। यानी अल्लाह पे यकीन रख लें कि जो कुरान में वो अल्लाह ने सच कहा है कि ऐसा होगा, ये झूठी किताब नहीं है, ये हम कहानी नहीं है जो हम बयान करते हैं। जिस बंदे को ये समझ आ जाए ना कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है वो सच है, बिल्कुल सच है, एक एक लफ्ज़ सच है, आप सच की आंखों से इसको पढ़ें तो फिर आप समझेंगे कि कुरान असली में कोई एक कहानी नहीं है बल्कि ये आपको ज़िंदगी को यानी आपको बल्कि आपकी अच्छाई के लिए कह रहा है कि आपको जन्नत की तरफ जाने का एक रास्ता बता रहा है। यही मेरा मैसेज है।
जी, जज़ाकअल्लाह खैर।